रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजमन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज को तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का राजा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राजा होता है उसके तो मंत्री होता है, तो प्रयागराज के मंत्री कौन है? सत्य। प्रयागराज की रानी कौन है? कि श्रद्धा। प्रयागराज के मित्र कौन है? कि माधव। प्रयागराज के भंडार में क्या क्या भरा पड़ा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पदार्थ भरा भंडारू। राजा के भंडार होता है। प्रयागराज का देश कितना दूर है? पुण्य प्रदेश देश अति चारु, दूर दूर तक बड़ा सुंदर जो प्रकृति का वातावरण है वो प्रयागराज का देश है। और गढ़ कौन सा है उनका? किला। कि जो दुर्गम मार्ग आते हैं ना, चलते चलते कठिन, वो किला है। किला, किला में सीधा थोड़ी जा सकता है। सेना क्या है? कि जितने तीर्थ हैं सब प्रयागराज की सेना है। सेना किससे लड़ती है? कि अपने हमारे पापों से लड़ती है। जिस तीर्थ में जाते हैं नहाते हैं वहां पाप हमारे समाप्त होते हैं। क्यों? कि तीर्थराज की सेना का सैनिक है ये। कहते सिंहासन कहाँ है? राजा तो सिंहासन पर बैठते हैं। संगम सिंहासन सुटी सोहा, जहां तीनों नदियों का संगम होता है वो प्रयागराज का सिंहासन है। अच्छा बाबा, राजा के तो एक छत्र रहता है। छत्र कहाँ है? अक्षय वटु। अक्षय वट है वो छत्र है। और चंवर क्या है? गंगा और यमुना की जो तरंगे हैं वो चंवर है। सेवई सुकृते साधु सुचे पावई सब मन काम। ऐसे जो तीर्थराज का सेवन करने वाले लोग होते हैं, जैसे राजा की सेवा करते हैं तो सब कुछ मिलता है, ऐसे तीर्थराज का सेवन करने वाले से सब मन की इच्छाएं पूरी होती है। बंदी वेद पुराण गण कहे विमल गुण ग्राम। वेद पुराण आदि सब बंदी बने हुए, वे सब गुण ग्राम माने गुणों का समुदाय का बखान करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हम तीर्थराज की बड़ाई कौन कह सके भाई, हम तो नहीं कह सकते। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, पाप के जो पुंज है वो तो है हाथी और प्रयागराज है सिंह।
हाथी को सिंह मार देता है, ऐसे हमारे पाप पुण्य है वो है हाथी। हाथी काला होता है, हाथी यूं चलता है मस्ती से। ऐसे पापी आदमी होता है अभिमानी रहता है, और काला भी होता है हाथी। इसलिए पाप रूपी हाथी के लिए ये प्रयागराज सिंह है। सिंह ऐसा बड़ा सुंदर ये तीर्थराज के दर्शन हुए। राम जी जो स्वयं आनंद स्वरूप है उनको और आनंद मिला। भगवान स्वयं तीर्थराज की महिमा सीता जी को सुनाते हैं। देखो सीते, ये वो तीर्थराज है। सुनो लक्ष्मण, तीर्थराज की बड़ाई सुनो बड़ाई। बार बार भगवान तीर्थराज की महिमा गाते हैं और गाते गाते तीर्थराज की महिमा में डूब जाते हैं। इस प्रकार से त्रिवेणी पर आए और स्नान वगैरह किया, भगवान शंकर की पूजा की और फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज ऋषि ने अपने आश्रम में आते हुए राम जी को देखकर अपार आनंद का अनुभव किया। कैसा आनंद किया अनुभव? कि ब्रह्मानंद रास जनु पाई, जैसे उनको ब्रह्मानंद मिल गया हो। रही ब्रह्मानंद, खूब आनंद हुआ। दीन अशीष मुनि सऊर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानि। इतने आनंदित हुए, कहा कि आज तो हमारे न जाने कौन से बड़े भारी पुण्य थे, उन पुण्यों का फल विधाता हमारे सामने प्रकट कर दिए कि राम जी हमारे आंखों के सामने बैठे हुए हैं। खूब आनंद में डूबे हुए भरद्वाज ऋषि। कौन सुना रहे हैं ये कथा? शंकर जी। कौन सुना रहे हैं कथा? तुलसीदास जी। कौन सुना रहे हैं ये कथा? याज्ञवल्क जी। अब भरद्वाज जी का प्रसंग आता है तो याज्ञवल्क जी की बात शंकर भगवान सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं ये कथा? ये सुना रहे गरुड़ जी महाराज। चार जने सुनाने वाले हैं। भगवान शंकर सुनाते हैं, गरुड़ जी सुनाते हैं और याज्ञवल्क जी सुनाते हैं, अपने तुलसीदास जी सुनाते हैं। चार जने सुना रहे कथाओं को। तो जहां भरद्वाज का नाम आता है वहां पर ये तीन जने बोलते हैं। तीन जने बोलते हैं तो भरद्वाज ऋषि क्या प्रसंग हमारे तीन जने सुना रहे हैं। भगवान शंकर और शंकर जी भगवान, गरुड़ जी और तुलसीदास जी, तीन जने सुना तो याज्ञवल्क जी भी रहे। पर जहां ऐसे जब देखो, जहां सती का विशेष प्रसंग नाम लेके आता है वहां तो शिव जी सुना रहे हैं, लेकिन शिव जी अपने सती का ही मोह हुआ वो प्रसंग शिव जी थोड़ी सुनाएंगे। जहां शिवजी के आनंद की बात आएगी वहां शिवजी नहीं सुनाएंगे, वहां काकभूषण जी सुनाएंगे। और इन तीनों की बातें हमारे तुलसीदास जी बस सुना रहे हैं। कुशल प्रश्न करिए आसन, आइए आइए दशरथ नंदन आइए। अब ऋषि के पास तो कंदमूल फल होते हैं। देखो कंदमूल फल अंकुर दीने, अंकुर नीके, अंकुर माने अंकुरित दिए। अब अंकुरित साधु महात्मा खाते नहीं है। जैसे चना है भिजो दिया और उसमें अंकुर निकले आया ना, उसको साधु लोग नहीं खाते। मूंग है अंकुर निकले आया नहीं खाएंगे, क्यों? उसमें जीव आ जाता है, नहीं खाते। या अंकुर दे दिया के कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमीके। ये तो अंकुर क्या है? ये कोई अंकुर माने कोई पौधे का अंकुर है, ये किसी फल का अंकुर नहीं है। पौधे का अंकुर होता है, अथवा जैसे नीम की हरी हरी पत्ती, शुरू शुरू में चैत बैसाख में जो हरी हरी पत्ती होती है वो भी अंकुर कहलाती है, ताजी ताजी पत्तियां। वो भी अंकुर होती है। सी लखन जन सहित सुहाए, देखो कितना विचित्र एक गुप्त पद दिया गोस्वामी ने, सीता जी लक्ष्मण जी इन दोनों के साथ में एक भगत और है, वो भगत कौन है? निषादराज। तो सी लखन जन सहित सुहाए, अब जन माने निषादराज, उसके साथ में राम जी महाराज बैठ करके खूब आराम से फल फूल खाए। राम जी महाराज को भरद्वाज ऋषि बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि सुनो राम, आज हमारा सब तीर्थ करना, त्याग करना, तपस्या करना फलीभूत हो गया, यज्ञ जोग वैराग्य सब सफल हो गया। क्यों करते हैं हम लोग? आपकी प्राप्ति के लिए करते हैं। तीर्थ करो लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, स्वभाव वही रहा, खूब पैसा भी खर्च करते हैं तीर्थों में, समय भी लगाते हैं, लेकिन तीर्थ जाकर के भी घर में वैसी लड़ाई करें और वैसा ही स्वभाव बनाए, तो वो तीर्थ सफल नहीं हुआ। तीर्थों में जाने पर अपने आप में बहुत बड़ा भारी परिवर्तन लाना चाहिए। त्याग किया, वस्तु का त्याग नहीं, अपने अंदर जो स्वभाव में कमी है उसका त्याग। आज हमको राम तुम्हें अब लोकत आजो, आज आपको देखते ही सब चीजें सफल हो गई हमारी, अच्छे अच्छे साधन सफल हो गए। लाभ अवधि सुख अवधि, सबसे बड़ी लाभ की अवधि क्या है? लोग कहते हैं हमको ये चीज मिल गई, धन मिल गया, बड़ाई मिल गई, पद मिल गया, ना जब तक भगवान नहीं मिले ना तब तक कुछ नहीं मिला है। लाभ की अंतिम अवधि भगवान है और सुख की अंतिम अवधि वो भी भगवान है। भगवान मिलने से ही लाभ का अंतिम फल मिलेगा और सुख का अंतिम फल मिलेगा। आज हमने आपके दर्शन कर लिए, हमारी सब आशा फलीभूत हो गई, अब तो आपसे बस हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना है, एक चीज देव। देखो भरद्वाज ऋषि की बात और केवट की बात में देखो कितना अंतर है, कितना अंतर है। भरद्वाज ब्राह्मण है, केवट एक मामूली सा बहुत नीची जाति का है। भरद्वाज ऋषि विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, शास्त्रकार है, ये शास्त्र वगैरह कुछ नहीं जानता। और भरद्वाज ऋषि मांगते हैं कि निज पद सरसिज सहज सनेहू, आपके चरणों का मुझे स्वाभाविक प्रेम दे दीजिए, चरण कमलों में मेरा प्रेम हो ये दे दीजिए। उसने बिल्कुल नहीं मांगा, मांगे क्या हो? देखो उसने ये सोचा कि मैं तो ये चीज मांगने का भी अधिकारी नहीं हूं, भगवान से मैं भक्ति मांगूं इसका मैं अधिकारी नहीं हूं। इसलिए भगवान ने उसको भगति विमल बर दे, उतराई उतराई तो कुछ दी नहीं और भक्ति का निर्मल वरदान दिया उसको बिना मांगे। भगवान से क्या मांगना भाई? भरद्वाज ऋषि देखो केवट के बाद ही आते हैं, केवट जैसे नहीं आए। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु, कर्म बचन मन छाड़ी छलू। बहुत बढ़िया बात है, कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुमार, तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। कर्म वचन और मन से जब तक ये प्राणी आपका नहीं हो जाता है तब तक करोड़ों उपाय कर लो इसको सुख नहीं मिलेगा। भगवान का होने में सुख मिलेगा, अपने आप को जब तक मनुष्य मैं भगवान का हूं ये हृदय से स्वीकार नहीं करता है तब तक उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, वो सपना तो झूठा है और सुख नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि तब तक वो वहां उनमें मिला नहीं है, भगवान का हुआ नहीं है। भरद्वाज ऋषि के भक्त ने वचन बड़े प्रेम से सुने और राम जी महाराज संकोच में पड़ गए। देखो भरद्वाज ऋषि के तो यहाँ भगवान संकोच में दे, लेकिन कल केवट ने जो बातें कही ना, भगवान को संकोच नहीं, भगवान को संकोच क्यों नहीं हुआ, भगवान को कहा कि आपके पैर दूंगा कि लो धोले भाई, नहीं तो मेरी नाव उड़ जाएगी और ये ऋषि की पत्नी बन जाएगी, मेरा तो सब काम बंद हो जाएगा। क्या स्वाभाविक बातें निकल रही थी, बात को भी भगवान ने काटा नहीं उसको कि साहब मैं तो आपके पैर धोऊंगा, लक्ष्मण जी चाहे तीर मारू भले ही। लक्ष्मण जी भी हंसने लगे उसके साथ, इतने क्रोधी लक्ष्मण जी महाराज, वास्तव में क्रोधी थोड़े ही है लक्ष्मण जी महाराज, तो जहां राम जी का जरा सा अपमान होता है वहां रघुपति कीरति विमल पता का दंड समान भयो जस जाका, जैसे पताका होती है यूं झंडी उसके नीचे डंडा होता है, तो भगवान की जो कीर्ति है वो फहराने के लिए डंडे की जरूरत है, डंडा है हमारे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी यदि गर्म मिजाज के नहीं हो तो राम जी की दया का क्या पता चले बताओ। सुख सारण गए थे राम जी की सेना में गुप्तचरी करने के लिए, तो बंदरों ने पकड़ लिया और खूब मारा, तो उनको नाक और कान जबूर लिए उनके, फिर राम जी ने उनको छुड़ाया। अरे रे रे अच्छा, वो गए रावण के पास में कि जी मुझ हमको तो राम राम की सौगंध खिलाई ना, तब जाके छोड़ा, इतने दयालु है लक्ष्मण जी, तो कोई दयालु नहीं है। अब लक्ष्मण जी यदि क्रोध नहीं करे तो राम जी की दया का कैसे ज्ञान होगा। वे लक्ष्मण जी महाराज केवट के विवाह कुछ नहीं बोलते, ये तो लक्ष्मण जी कह सकते थे, केवट इतनी बात बनाता है, वो खुद बड़े प्रेमी है ना। केवट की इतनी स्वाभाविक भक्ति थी, किसी को भी वो अप्रिय नहीं लग रहा था। अटपटे वचन बोले अटपटे, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे शब्द तो अटपटे है, भाव अटपटा नहीं था। यहां शब्द भी बड़े अच्छे लेकिन केवट जैसे भाव नहीं है, थोड़ी सोच समझ के बोलते हैं, जो सोच समझ के बोलते हैं ना वो बालक जैसे नहीं बोलते। बालक बोलता है बिना सोचे समझे बोलता है, उसमें जो रस आता है वो रस सोच समझ करके बोलने वाले वाणी में नहीं आता। अब करी कृपा देहु बर एहु निज पद सरसी जे सहज सनेहु, ऐसी बात सुनी राम जी महाराज संकोच में पड़ गए। भगवान ने फिर भरद्वाज ऋषि की महिमा गादी कि हमारे भरद्वाज ऋषि कितने बड़े हैं, कोटि भांति कही सबई सुनावा, कोटि भांति माने करोड़ों तरीके से, अब इतना समय कहां था, माने अनेक तरीके से बताया। राम जी महाराज ने एक बात कही कि देखो सबसे बड़ा गुण क्या है कि जो दूसरों में गुण देखता है, दूसरों की बड़ाई करता है, वो सबसे बड़ा होता है। सो बड़ सो सब गुणगन गेहु, जय मुनीस तुम आदर देहु। आदर को लेने वाला बड़ा नहीं होता है, आदर को देने वाला बड़ा होता है। हम लोग हैं, हमारे मन में बड़ी कमियां रहती हैं, आप लोग आते हो सम्मान करते हो तो हम लोग ऐसा हम कुछ बड़े आदमी हैं, हम बड़े वास्तव में नहीं है, आपने आदर दिया है। देने वाला कितना बड़ा होता है, आदर जैसी चीज हम लेकर के राजी होते हो, हमारी कितनी तुच्छता नीचता मूर्खता है, आपने तो आदर दिया है, देखो कितने महान हो आदर लेने वाला और एक आदर देने वाला, तो लेने वाले की अपेक्षा देने वाला बहुत बहुत बड़ा होता है। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू जय मुनीस तुम आदर देहू। आप आदर देते हो महाराज, कितने बड़े हो, सारे गुण आ गए उसमें, सारे गुण। भरद्वाज ऋषि तो एकदम चुप हो गए। देखो भगवान की और भक्तों की बातचीत होती है ना, वहां सावधानी से वो बातचीत पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। हमारे लायक बहुत बात मिलती है, पढ़ने वाले को बहुत बात मिलती है। कितनी बढ़िया बात है, आदर तो देने की होती है, आदर लेने की नहीं होती। प्रशंसा देने की होती है, लेने की नहीं होती। ऐसे घर में बढ़िया चीज होती है, उसको देने का जो आनंद आता है वो लेने का नहीं आता। आप देवे दूसरे को, उससे आनंद आएगा, शांति मिलेगी। लेकिन हम लोगों को पता नहीं, हम लेने में ही मानते हैं। अब देखो ऋषि ने कितना आदर दिया, तो भगवान ने उनको इतना ही आदर, उसे चौगुना आदर दिया। कोटि भांति कही सबई सुनावा, मुनि रघुवीर परस्पर नवई, एक दूसरे के सामने नमस्कार करते हैं। प्रयागराज में रहने वाले लोगों को पता चला कि अरे राम लक्ष्मण सीता आए हैं, दौड़े दौड़े आए, सब दौड़े दौड़े, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी सब आए। भरद्वाज ऋषि का आश्रम भर गया सब संतों से, महात्माओं से। अरे दशरथ जी के बेटा आए हैं, तो दौड़े दौड़े आए, खूब बड़े प्रेम से राम जी के दर्शन करने लगे, नेत्रों को आनंद मिला और ऋषि मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। फिर जो है सब प्रशंसा करते करते चले गए। रात भर राम जी ने प्रयागराज में निवास किया। प्रातःकाल रवाना होकर जाने लगे तो राम जी पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आप हमको बताइए कि अब हम कौन से मार्ग से जाएं। राम जी पूछते हैं कि हम कौन से मार्ग से जाएं। भरद्वाज ऋषि मन में हंसते हुए राम जी से कहते हैं, हे राम, तुम्हारे लिए तो सारे मार्ग बड़े सुगम हैं, कोई मार्ग दुर्गम नहीं, कठिन नहीं है। तुम्हारे लिए कोई मार्ग कठिन नहीं है, फिर भी हम आपके साथ में कुछ भेज देते हैं। शिष्यों को बुलाया और 50 को साथ में भेजा। ये 50 को क्यों भेजा जी? 50 को भेजा, जाओ तुम जाओ। अरे 50 को क्या भेजे, एक दो को भेज देते तो। ये ज्ञानियों की बात है। देखो खग जाने खग ही की भाषा। ऋषि मुनि 50 शिष्य भेजते हैं, वो बताते हैं। भगवान ने कहा ना कि भाई हमको मार्ग का पता नहीं है, तो 50 चेले भेज दिए। तो 50 को क्यों, यहाँ पे किसी को उठाना है क्या? राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, इनको तीनों को उठा के ले चलना है क्या? अभी ले चले उठा के। 50 का क्या मतलब है? वो कहते हैं ये 50 क्या है हमारे पास, 50 शास्त्र है। तो शास्त्र 50 है कि हाँ, कौन कौन से गिनते जाना हो। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपुराण और 6 शास्त्र, कितने हो गए? 50। 4 8 और 8 36 44, 44 6 50। इन 50ों के अंदर आपके जाने का रास्ता है। किसी भी पुराण में देख लो, आपकी प्राप्ति होती है। 4 वेद है, 4 उपवेद है। उपवेद कौन से है? आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, स्थापत्य वेद है, गांधर्व वेद है, ये भी वेद है, ये उपवेद कहलाते हैं। उपवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये तो प्रमुख वेद है, और आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद और गांधर्व वेद। आयुर्वेद माने तो आयुर्वेद जानते हैं, शरीर का इलाज होता है। गांधर्व वेद माने संगीत का कला, और स्थापत्य वेद ये बनाना, मकान वगैरह बनाना, लकड़ी हो गए सब, ये स्थापत्य वेद। आयुर्वेद और धनुर्वेद शस्त्र विद्या, ये 4 उपवेद होते हैं, और 18 पुराण और 18 उपपुराण और 6 शास्त्र। ऐसे ये 50 दिए। राम जी महाराज इन पचासों को देखे, अच्छा ये मेरे साथ चलेंगे तो कहा ऐसा करो पचास की जरूरत नहीं है, हमारे साथ चार जने चल चलो। अब पचास को तो रोक दिया और केवल चार को लिया। ये चार कौन है आप सब समझ गए होंगे, चार वेद, क्योंकि पुराण है ये वेदों से ही निकले हैं, छह शास्त्र है वो भी वेदों से निकले हैं और चार उपवेद है वो भी वेदों से ही निकले हैं। चार जो प्रधान वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके अंदर सब वेदों की बातें आ जाती है। जिसमें जो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद, अथर्ववेद ऐसा है इसमें कूट कपट नीति वगैरह के भी मंत्र आ जाते हैं। राजनीति क्या है, वो क्या है, कैसे कपट होता है, कैसे माया होती है, बहुत आता है। तो इस वेद से बहुत से वेद निकलते हैं। लौकिक में ये कहते हैं कल्याण करने में और कर्म कांड में तीन ज्यादा आते हैं। वेद के अंदर 100,000 मंत्र है जिसमें 80,000 तो कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 है वो ज्ञान कांड के हैं। इनका टालना बड़ा मुश्किल ही हूं, एक एक प्रकरण नहीं इनमें से टालना पड़ता है, इसलिए वेद का अध्ययन बड़ा मुश्किल है। गीता है सबसे टली हुई, सब सबका सार लेकर के सब गीता, जैसे अपने कई चीजों का सार ले लेते हैं ना, तुलसी का गाढ़ा है तो उसमें काढ़े के अंदर धनिया के भी आ गया, तुलसी भी आ गई, लौंग भी आ गई, इलायची भी आ गई, मुलेठी भी आ गई, सबका काढ़ा हुआ, सबका सार, ऐसे गीता में सबका सार। तो चार ले लिए भगवान ने, इन चारों ने देखा गया हमारा जन्म अब सफल हो गया, हम काम आ गए भगवान के, चले। अब चले तो भाई ग्राम निकट जब निकस ही जाइए, चार को क्यों लिया साथ में, इतनी देर तक तो कभी साथ में लिया नहीं, अयोध्या से इतने लोग आए किसी को साथ लिया नहीं, बीच बीच में बहुत से गांव आए किसी को साथ लिया नहीं, और अब की बार 50 आए तो चार को लिया, तो चार को थोड़ी देर साथ में क्यों लिया। साथ में इसलिए लिया कि वेदों की बातें हैं इनको भगवान स्वीकार करते हैं, वेदों का आदर करते हैं, इसलिए इन चारों को साथ में लिया। बहुत थोड़ी देर ही साथ चले ये, जिस गांव के पास में जाते हैं उस गांव के अंदर लोग सनात हो, और हे राम सीता के दर्शन दौड़े दौड़े आते हैं, देख ही दर्शन नारी नर धाई, दौड़े दौड़े आए दर्शन करने के लिए। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर समश्याम। चारों को विदा कर दिया, विदा कीन बटु तनय करी, उन बटुओं को ब्रह्मचारी, अब तुम जाओ। क्या रहस्य है यार, तुलसीदास जी महाराज जाने क्यों भाई, अब वेदों को हमने ले लिया, अब इतनी देर साथ कर लिया, अब हम तीर्थों में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, वहां पर इन वेदों की चर्चा वेदों के सामने कैसे करें, वेदों के सामने करना तो ठीक नहीं लगता, इसलिए वहां प्रेम की बात, देखो वेदों में प्रेम की बात कम आती है और यहां प्रेम की लीला ज्यादा होगी। गांव की बिचारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें जो कुछ नहीं जानती वे राम जी का दर्शन करेंगी, उनके साथ में वेद रहेंगे, तो भाई वेद भगवान से इतनी प्रार्थना और इतना प्रेम तत्व को नहीं बताते। जहां वेद नेति नेति बोलते हैं उनको कहा अब आपका काम पूरा, आप जाओ, आप तो ऋषि मुनियों के पास जाओ, और भोले भाले भक्तों के पास हम जाते हैं। तीर्थपासी सब दौड़े दौड़े आए, राम सीता और उस लक्ष्मण जी की सुंदरता देख करके अपने भाग्य की सरारे, हमारा भाग्य देखो इनके दर्शन हो गए। अब उन्होंने देखा ये कौन हो सकते हैं भाई, पूछो तो सही इनसे ये कौन है, इनसे पूछो कौन सा गांव तुम्हारा, तुम्हारा नाम कौन सा, तुम्हारे बाप का नाम कौन सा। कि नहीं भाई अपने क्यों पूछे, अपने जान नहीं पहचान नहीं, अपन देखते हैं बड़े सुंदर, बस हमें नाव गांव से क्या मतलब है। ये मामूली भक्ति नहीं है, वो भगवान के गुणों को भगवान के प्रभाव को समझ करके जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम दो नंबर का होता है। और भगवान के अंदर कुछ भी विशेषता न देख करके प्रेम किया जाता है वो एक नंबर का प्रेम होता है, बहुत बड़ा प्रेम होता है। तो वे नाव गांव पूछत सकुचाई, तो उनमें कई बड़े बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा ठहरे ठहर ठहर हम देखते हैं कौन है, पूछते मालूम कर। अरे सुनो सुनो, ये अयोध्या नहीं है? हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ है ना, उनके लड़के हैं, पिता ने इनको वनवास में आने की आज्ञा दी और ये वनवास में आ गए। अरे क्यों आज्ञा दी? इन्होंने अपनी रानी को एक वरदान दिया था और रानी ने वरदान मांग लिया तो ये वन में जवाना हो गए। तो ये तो भाई राजा रानी ने अच्छा नहीं किया, अपने बेटों को ऐसों को इन्होंने वन में भेज दिया, ये तो अच्छा नहीं किया। ऐसे वो विचार कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज के गांव में पहुंच गए भगवान। प्रयागराज से जितनी दूरी पर राजापुर गांव है, भगवान उधर से जाने लगे, तुलसीदास जी महाराज बैठ गए, कलम रख दी उन्होंने, रामायण लिखना बंद गए, ध्यान का हो। हे भगवान, मैं तो इस कलयुग में पैदा हुआ हूं, आप त्रेता युग में अवतार लिए थे, मेरे गांव होकर आए, उस समय मैं आपका दर्शन किया होता तो मैं ऐसे ऐसे आपके चरणों में गिर जाता। तुलसीदास जी भाव रूप से भगवान का ध्यान करके भगवान को प्रणाम करने लग गए। अब ये कौन लिखे कौन क्या करे, तो टप से हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने आकर के लिखना चालू किया, तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस्सु हावा, कवि अलखित गति वेद विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। हनुमान जी महाराज लिखते गए और तुलसीदास जी को देखते गए, तुलसीदास जी ध्यान में। तुलसीदास जी ने 100 वर्ष की उम्र हुई ना तब रामायण लिखी थी, 125 वर्ष रहे वो, 100 वर्ष से ज्यादा हुए तब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। रामायण उनकी अंतिम कृति है और तेई अवसर एक तापस आवा, एक तपस्वी आया है। कि ये तपस्वी कौन हो सकता है? बहुत से रामायणकार बोलते हैं कि भाई ये तो यूं ही चेप दिया किसी ने, पर गीता प्रेस वालों को जितनी भी रामायण की प्रतियां मिली उन सब के अंदर ये प्रसंग आता है, तेई अवसर एक तापस आवा। तो ये तपस्वी कौन हो सकता है इसके विषय में मतभेद है। कोई तो कहते हैं कि भाई अग्नि आया, अग्नि तो जचा नहीं, कोई कहते इंद्र आया, इंद्र वाली बात भी नहीं जचती। कोई कहते हैं शिवजी आए, कि शिवजी वाली बात नहीं जचती। क्यों आए शिवजी? शिवजी तो स्वयं साक्षात इस कथा के पात्र है, कौन आ सकता है? क्या हनुमान जी आए? तो हनुमान जी आए ये भी मान सकते हैं कहीं, पर ऐसे हनुमान जी आए तो हमारे तुलसीदास जी यदि ध्यान में डूब जाए, साधकों को लाभ किसमें है? साधकों को लाभ, आपको हमको लाभ है इस बात में कि अपन सोचें कि तुलसीदास जी आए। कि कैसे? कि जब आदमी भगवान का ध्यान करता है तो वर्तमान काल, वर्तमान शरीर, वर्तमान भाव ये सब लुप्त हो जाते हैं। और जिस काल में राम जी हुए उस काल में वो जुड़ जाता है, और जैसा वो भाव रखता है वो भाव राम भगवान तक पहुंच जाता है। तो तुलसीदास जी ने देखा कि मेरे गांव में राम जी आए थे, उस समय मैं उनके चरणों में गिर जाता, तो वास्तव में ध्यान में भगवान आ गए उनके। कवि अलिखित गति, देखो ये कवि अलिखित, ये कवि के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये खुद बता रहे, इसका मतलब हनुमान जी के द्वारा लिखा हुआ है। कवि अलखित गति वेशु बैरागी, ये बैरागी महात्मा थे, छोटे जी अवस्था 15-16 वर्ष की अवस्था, मन क्रम बचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी, परे उदंड जिमि धरनी तल दसान जाई बखानी। स्वामी जी महाराज रोने लगे, राम जी के चरणों में इष्ट देव को पहचाना तो रोने लग गए। अब देखो राम जी के इष्ट देव कौन से हैं, देख सॉरी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट देव कौन से हैं, तुलसीदास जी के इष्ट देव वनवासी राम, वनवासी राम, और शंकर भगवान के इष्ट देव कौन है, बंदऊ बाल रूप सोई राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के अजीर में, अजीर बोलते हैं आंगना, उस आंगने पर बिहार करने वाले छोटे बालक राम, वो भगवान को अच्छे लगते हैं। तुलसीदास जी को लगते हैं वनवासी राम, अच्छे अच्छे महापुरुष हुए उनको वनवासी राम अच्छे लगते हैं, उनको राजा राम के राजा राम, राजा तो बहुत मिलते हैं, वनवासी राम का ध्यान करते हैं तो वैराग्य आता है, वैराग्य, हमें राज्य से क्या मतलब। दो भगत थे, एक राम जी और एक राम जी को मानने वाला, एक कृष्ण भगवान को मानने वाला, दो भगत दोनों जा रहे थे, बताते हैं जा रहे चलते चलते रास्ते में एक सिंह आ गया, तो डर गए दोनों, अब क्या करें कि भाई तुम्हारे इष्ट को याद करो, हम हमारे इष्ट को याद करें, जिसका इष्ट पहले आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो हे बन बिहारी कृष्ण, हे राजा राम, हे राजा राम, हे दशरथ नंदन राजा राम, जल्दी आओ, हे बन बिहारी कृष्ण जल्दी आओ। तो कृष्ण भगवान आ गए, सिंह भग गया, थोड़ी देर में राम जी आ गए। उस भगत ने कहा महाराज मेरी तो यहां से नाक कट गई, क्यों आप देरी से क्यों आए, आपको पहले आ जाना चाहिए था। देख भाई तुमने क्या कहा कि राजा राम, तो मैं राजा होने के पहले तो मैं अपना मुकुट लगाऊंगा और पूरा राजसी वेश धारण करूंगा, उसके बाद सबको बुलाऊंगा, मेरे पीछे दो आदमी आगे दो आदमी पीछे, इतने सब इकट्ठा करूंगा ना। इसने बुलाया बन बन बिहारी कृष्ण, तो वो बन के अंदर ही फिरता है, वो आ गया। तुझे भी यही कहना चाहे बनवासी राम, तो मैं अभी आ जाता, तो मैं बनवासी नहीं था क्या, बन के अंदर मैं गया नहीं, अरे बन के अंदर जाने से ही तो मेरी महिमा हुई है, और तुम राजा राम, राजा राम होकर के मैंने क्या काम किया बताओ, राजा राम होने के बाद तो मैं एकदम लॉक्ड हो गया, पैक्ड हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, जो कुछ किया वो मैंने वन के अंदर किया, और तुम राजा राम पुरकार रहे हमको, तो भाई अब देरी हो गई। तो भगवान भी निज इष्ट देव पहचान, देखो इष्ट देव नहीं निज इष्ट, लोग क्या करते हैं होड करते हैं भाई भारतों मैं तो इन माना तू भी इन मान, ऐसा नहीं करना चाहिए। मायों मायों में आदत है कि एक ही सबके नहीं कहते, प्राय कहते मैं इन माना तू भी इन छोड़ इन मानन लाग जा, तो मैं इन माना अच्छा थे दोनों छोड़ो, मैं मानू जिन थे मान लो मारो वो काम कर दिए और मारो वो काम कर, नहीं भाई आप जिन मानो नहीं बा मान्यता मत छोड़ाओ, चाहे कितना ही काम बिगड़ जाओ, अपने जो इष्ट है भी इष्ट सू भ्रष्ट नहीं होना। निज इष्ट देव पहचान, निज इष्ट देव, खुद का अपना इष्ट देव वनवासी राम थे गोस्वामी जी महाराज के, उनको पहचान लिया और दंडवत प्रणाम किया, और फिर राम सप्रेम पुलकी उरलावा, राम जी महाराज बड़े प्रेम सहित उनको अपने छाती से लगाए तुलसीदास जी, कैसे परम रंक जिमि तापस, परम रंक जनु पारस पावा, जैसे किसी परम रंक ने, रंक माने महादरिद्री, महादरिद्री ने कोई पारस को पा लिया हो। अब यहां पर रंक कौन है और पारस कौन है? लोग कहेंगे भगवान पारस है, तुलसीदास जी महाराज रंक है। नहीं, यहां राम जी रंक है और तुलसीदास जी पारस है। आनंद किसको आया ज्यादा, राम जी को ज्यादा आया कि तुलसीदास जी को आया? राम सप्रेम पुलक उरलावा, राम जी महाराज बड़े प्रेम से उनको अपनी छाती से लगाए। वो तो दंडवत प्रणाम की उनको उठाया, छाती से लगाया। तो जिसमें ज्यादा प्रेम होता है ना, उसमें प्रेम की इच्छा होती है। प्रेम की इच्छा उसी में ही होती है जिसमें ज्यादा प्रेम होता है। बच्चा है वो रूस जाए मां से, माँ से रूस जाए तो माँ का चित्त बहुत दुखी होता है, माँ के मन में चिंता होती है। माँ से बच्चा नाराज हो जाए तो बच्चे को जरूरत ज्यादा है माँ की, लेकिन प्रेम माँ में ज्यादा है, क्योंकि माँ को दुख होता है, प्रेम के अभाव में दुख होता है, माँ के मन में प्रेम ज्यादा। ऐसे राम जी महाराज है परम रंक जनु पारसु आवा, तुलसीदास जी महाराज के मिलने पर इतनी खुशी हुई भगवान को, इतनी खुशी हुई जैसे परम रंक को पारस मिल गया हो। तो आनंद में भगवान के यहां कोई कमी नहीं, भगवान के यहां इतनी कमी है कोई भक्त नहीं मिलता, और भगवान के कोई कमी नहीं है। भगवान बैकुंठ में रहते हैं, इतना श्रृंगार क्यों करे रखते हो? यहां माथे पर तो मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले के अंदर वैजयंती माला और ये कौस्तुभ मणि है, भुजाओं में भुजबंद है, हाथों में कड़े हैं, अंगुलियों में अंगूठियां हैं, कमर में करदनी है, चरणों में नूपुर है। इतना इतना राम जी आभूषण क्यों लादते फिरते हैं? भगवान विष्णु भगवान क्यों लादते फिरते हैं? वो कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, धन ऐश्वर्य मेरे पास बहुत है, देख लो सिर से लेकर के चरणों तक आभूषणों से लदा हुआ हूं, फिर भी मैं रंक हूं, मैं रंक महादरिद्री हूं। किस बात का? कि ये जीवों का प्रेम मुझे नहीं मिलता। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। इतना राम जी को आनंद है आज मिलकर के। मनो प्रेम परमार्थ दो, माने एक तो प्रेम और एक परमार्थ परम तत्व, इन दोनों का आज मिलना हुआ हो। फिर उस बैरागी ने क्या किया? लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने बहुत प्यार से उनको उठाया, और फिर अब सीता जी के चरण का स्पर्श तो कैसे करे, कितनी मर्यादा है। माँ है सीता, देखो माँ के यहां बताया है शास्त्रों में, माँ को यूं प्रणाम नहीं करना चाहिए, यूं कर लिया है। माँ के जो चरण है उनके ऊपर ये यहां का मस्तक का बीच का भाग, एक तो देखो माताएं मैंने टीकी लगाती है, भाई लोग टीका लगाते हैं ना, वो यहां लगाते हैं, दोनों नेत्रों के बीच में, यहां नहीं लगता, यहां टीका का कोई अर्थ नहीं है, यहां दोनों भौहों के बीच में लगाते हैं, यहां टीका लगाने का कोई अर्थ नहीं है, टीका लगाना चाहिए भाल के बीच में, ये यहां है अग्नि का स्थान, यहां अग्नि का स्थान है, चंदन वगैरह लगाते हैं इससे यहाँ ठंडक रहती है। आप देख लो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगे, यहां तक आप केवल इसको ढक लो, ये भाग ढका रहेगा, सारा शरीर आपका खुला है, आपके ये पेट खुला है, छाती खुली, पीठ खुली, इतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन सब जगह ढका हुआ, लेकिन ये यदि खुला है तो बहुत गर्मी लगेगी आपको, इसलिए ये बंद रहना चाहिए कि अग्नि यहाँ है, यहाँ तो उस अग्नि को पूजने के लिए यहां टीका लगाया जाता है। तो माँ के चरणों में प्रणाम करे तो ये बेटा है वो यहां लेकर के और ये छुबे माँ को, तब प्रणाम पूरा माना जाता, प्रणाम पूरा नहीं होता, पिताजी के चरणों में छू सकते हैं। अब माताजी के अब चरण यूं आजकल चालू हो गए, यूं चरण छुए, यूं इस हाथ से तो ये, इस हाथ से बैठे हुए हो तो यूं चरण छोड़े, क्यों पैर उनके यूं हो गए, मतलब दाएं हाथ से दाया चरण बाएं हाथ से बाया चरण, यूं प्रणाम होता है। तो सीता जी को कैसे प्रणाम करें, तो सीय चरण धरी पुनिसीय चरण धूरी धरी सीसा, सीता जी के चरणों की धूली को लेकर अपने सिर पर धारण किया, सीता जी ने अपना पुत्र समझकर उनको आशीर्वाद दिया। और फिर उसने निषाद राज कीन निषाद दंडवते, निषाद राज ने उस बैरागी महात्मा को प्रणाम किया, तुलसीदास जी को प्रणाम किया, मिले उ मुदित लखी राम स्नेही, भगवान का परम स्नेही जान करके उन्होंने उसको बड़े प्रेम से स्वीकार किया। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, वो अपने नयन रूपी दोनों से राम जी का रूप रूपी अमृत उसको पीने लग गए तुलसीदास जी महाराज। क्यों, मुदित सु असन उपाय जिमी भूखा, जैसे भूखे आदमी को बढ़िया भोजन यदि उसको मिलता है तो कितनी प्रसन्नता होती है, ऐसे वो प्रसन्न हो गए। अब ये देखो, ये ऐसा प्रसंग आया कि न तो वो पहले वालों से मिलता है न बाद वालों से मिलता है, ये बीच का एक विचित्र प्रसंग आया। पहले चौपाई आई, तई अवसर से पहले चौपाई आई, सुनी सब विषाद सकल पछिताई, रानी राय कीन भलनाई, रानी ने अच्छा नहीं किया। उसके बाद ते पितु मात कहो सखी कैसे, अरे सखी वो पिता माता कहलाने लायक हैं क्या, जिन पठे इन बालक ऐसे ऐसे बालकों को उन्होंने वन में भेज दिया, ये उस प्रसंग से जो ले बीच में क्यों लगा रही, एकदम बीच में, एकदम बीच में इसलिए लगाया तुलसीदास जी महाराज ध्यान में डूब गए हो। भगवान का ध्यान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा हाथ का काम छूट जाए और उसमें रहे। सेठ जी ने कहा था कि हमारा गीता प्रेस में कोई काम करने वाला आदमी भगवान का ध्यान में डूब जाए और वो प्रेस यूं ही चलती रहे, खाली चलती रहे, धड़ धड़ यूं ही चल रही है और प्रेस को नुकसान हो रहा है, हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। कोई आदमी गीता प्रेस, उस समय कंप्यूटर तो थे नहीं, हिसाब करने वाला ध्यान लगाते लगाते यूं बैठ गया और उसका हिसाब छूट गया। और शाम को हम पूछेंगे हिसाब क्या हुआ कि सेठ जी अमर से तो आज हिसाब हुआ नहीं, तो जब ये नहीं हुआ क्यों, कि आज हम ध्यान में डूबे रहे, हम उसको बहुत ज्यादा तनख्वाह देंगे, उसको हमारा काम आप बिगाड़ दो भले ही, पर भगवान के ध्यान में डूबे रहो। गीता प्रेस के अंदर एक आदमी का काम यही रहता था, अपने हाथ में एक भगवान का चित्र ले हुए थोड़ी थोड़ी देर में सबके पास राम राम यूं यूं करके सबको चित्र, उसका काम ही यही है, सुबह से शाम सब विभाग में घूम रहा। तो तुलसीदास जी महाराज यूं सब काम छोड़ करके वहां प्रसंग मिलाने का काम तुलसीदास जी का नहीं रहा। हनुमान जी ने आकर के लिख दिया, तुलसीदास जी ने कहा ये क्या अपन लिखा हुआ, अपन तो अपने पूर्व प्रसंग से ही चलो। फिर तुलसीदास जी पूर्व प्रसंग के अनुसार लिखते गए, वे जो है ऐसे राम लखन सी रूप निहारी, होई सने विकल नर नारी, ऐसे बिचारे गांव के भोले भाले नर नारी विकल होने लगे, सब दुखी होने लगे। अब ऐसे समय में भगवान ने निषाद राज को कहा, अब निषाद तुम चले जाओ। क्यों भाई, क्या नहीं अब तुम जाओ, यहां क्यों भेजा अब निषाद राज को, निषाद राज को इसलिए भेजा कि सबसे ज्यादा गांववासी जो दुखी होते थे उन दुख का प्रभाव निषाद राज पर ज्यादा पड़ रहा था। भगवान ने देखा कि निषाद राज कहीं हमको एक जगह रोक न दे कि महाराज अब यहीं रहो, मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, कहीं रोक न दे, इसलिए निषाद राज को बार बार जो है उसको शिक्षा दी और भेज दिया। तब रघुवीर अनेक विधि सखई सिखावनु दीन, राम रजा यसु शेष धरी भवन गवनु ते की। यहां से निषाद राज को परंतु फिर भी निषाद राज सुमंत को बोल देते हैं कि राम जी चित्रकूट गए हैं। चित्रकूट का तो अभी कोई प्रसंग ही नहीं आया, तो चित्रकूट कैसे चले गए राम जी, ये कैसे पता चला निषाद राज को। तो वहां प्रसंग आता है कि निषाद राज ने जाते जाते अपने गुप्तचरों को कहा कि दो तीन को कि तुम लोग है ना छिपे छिपे जाना, ये कहां जाके रहते हैं, हमको सूचना देते रहना, कोई किसी प्रकार की आफत आ जाए हम सब सेन दल बल सहित, क्योंकि हम जंगली आदमी है, हमको तो जंगल में लड़ना झगड़ना सब आता है, हम सब तैयार रहेंगे। तो उनको साथ में भेज दिया, छिपे छिपे भेज दिया और खुद मरा गया। अच्छा ठीक है महाराज, रवाना हो गए। राम जी ने इनको इसीलिए रवाना कर दिया हो कि ऐसे लोगों की दशा देखेंगे निषाद राज बड़े दुखी हो जाएंगे। ऐसे राम जी महाराज चलते जा रहे हैं, इधर लोग इकट्ठे होकर के और आप जो है राम जी महाराज से पूछ रहे हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे, अरे वो बच्चों तुम्हारे शरीर पर जो लक्षण लगते हैं वो तो किसी राजकुमारों के से लगते हैं, लेकिन तुम्हारी दशा देख करके हमको बहुत विचार आ रहा है, पैदल जा रहे हो, जो तुम्हारे शरीर के लक्षण है जो ज्योतिषी लोग बताते हैं कि तुम बहुत बड़े राजकुमार होने से सब झूठे हैं, तुमको तो महलों में रहना चाहिए, तुमको तो रथों पर खेलना चाहिए, तुम्हारे साथ तो सेना सुरक्षा पूरी होनी चाहिए, तुम तो जंगलों में फिर रहे हो, क्या बात है। अगम पान देखो अब आगे तो मार्ग बड़ा खराब आएगा, आप कहो तो हम आपके साथ चले। करिके हरि बन जाई न जोई, हम संग चले जो आयसु होई, बहुत हाथी है महाराज, बहुत सिंह है, आप हमको साथ में ले चलो। राम जी महाराज मन ही मन में हंसते हैं कि हाथी और सिंह आएंगे वो हमको तो खा जाएंगे, तो तुमको थोड़ी कोई बचा देंगे, इनका प्रेम देखते हैं। ऐ विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरई तिन्नहि कहि बिनीत मृदु बैन। राम जी महाराज जाओ जाओ कोई बात नहीं, आप लोगों का स्नेह हमारे साथ है ना, तो ये हाथी और सिंह वगैरह हमारा कुछ नहीं, जब जबरदस्ती भेजते रहते हैं। जिन जिन गांव में राम जी महाराज जाते हैं और जो जो गांव नगर के अंदर बसे हुए हैं, जो गांव नगर मार्ग के ऊपर बसे हुए हैं, उन गांवों की महिमा देवता लोग गाते हैं, करे ये गांव कितने अच्छे हैं कि इनके अंदर से राम जी जा रहे हैं। बसने वालों के लिए कहते हैं कि कितने पुण्यवान लोग हैं, वे राम और सीता और लक्ष्मण को बहुत प्रेम से देख रहे हैं, गंगा जी को भी देखते हैं, राम जी सीता जी को भी देखते हैं, और उनमें से क्या करते हैं कि राम जी महाराज के साथ साथ के चलने का काम करते हैं। राम जी महाराज जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं उस वृक्ष की महिमा गांव वाले कल्पतरु के समान, अरे रे रे ये वृक्ष आयो हो, तुम्हारे नीचे राम बैठे हो, आहा, ऐसे करही कल्पतरु तासु बढ़ाई। जिस स्थान का राम जी महाराज चरणों से स्पर्श कर लेते हैं वो भूमि मानो इतनी पूजनीय हो जाती है उनके लिए कि हमारा भाग्य खुल गया, इस भूमि के हम दर्शन कर रहे हैं। देवता लोग खूब अच्छी छाया कर रहे हैं, राम जी महाराज वन की शोभा देखते हुए जा रहे हैं, गांव गांव के लोग पास पास में आकर तरह तरह से उनसे बातें करते हैं। अब राम जी महाराज के पास में आते हैं ना, तब बात करने का एक तरीका, एक अन एक बोल सिख दे ही, एक को एक जना बोल, ए सुनो सुनो तुम्हारे नेत्रों का फल प्रदान करें, क्या, अरे इतने सुंदर दो राजकुमार, एक उनके साथ राजकुमारी, अरे जाके दर्शन कर आओ, नेत्रों का फल ले, दौड़े दौड़े आते हैं। एक नयन मग छवि उरानी, एक तो कई कई ऐसे हैं जो यूं देखते रहते हैं, अरे इनकी छवि आंखों से हृदय में रख लो, आंख के ऊपर पलक मारते भी नहीं है वो, एक देख बट छाह भली। कुछ लोग देखते ही जा रहे हैं, पर थोड़ा आगे चलो, राम जी से आगे पहुंच जाते हैं। आगे पहुंच गए, आइए आइए, कितना अच्छा बट का वृक्ष है, सघन बट वृक्ष है, आइए बैठिए। एक देखी बट छाह भली, दास मृदुल तृण पात, कोमल कोमल पत्तों का एक आसन बना देते हैं। और कहि गवाये छिनुक श्रमु गब नब अब की प्रात, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, या तो अभी चलो या फिर सुबह चलो। एक जना कहते हैं, एक जना हम कितना अच्छा ये ठंडा ठंडा पानी लेकर के आए, एक कलश भरी आ नहीं पानी, लो हाथ मुंह तो धो लो अच्छी तरह से, जल पी लो। भगवान के प्रेम को ठुकरा नहीं सके। राम जी ने देखा कि सीता शायद चलती चलती थक गई है, तो कहा सीते कितना अच्छा बटका वृक्ष है, आओ यहां पर विश्राम कर लेते हैं थोड़ी देर। अब वो वहां पर विश्राम करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां नर नारी चारों तरफ वो घेर लेते हैं, यूं यूं देखते हैं गांव में कौन है कैसे है। इकटक सब सो यही चहु ओरा, राम चंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। ऐसे लग रहे हैं राम जी महाराज श्याम शरीर वाले, और पास में लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं, वो दामिनी बरन। लक्ष्मी जी लक्ष्मण जी ऐसे लगते हैं जैसे कोई बिजली चमकती है, गोरवर्ण वाले हो। नख सिकते सुबग भावते जी का, वो जी में इतने अच्छे लगते हैं लक्ष्मण जी, एकदम गोर निचोर स्वच्छ सफेद ऐसे लक्ष्मण जी महाराज, और भगवान का मरकत मणि के समान श्याममय शरीर, इन दोनों की जोड़ी से ऐसा लगता है कि बरसात के अंदर बिजली चमकती हो। और हाथों के अंदर धनुष वगैरह ऐसे लगते हैं उनके जैसे कोई कमल, कमलन धनु तीरा, जैसे कोई कमल के पास में धनुष बाण हो, या हाथ तो कमल की तरह उनके अंदर धनुष बाण रख दिया हो। राम जी महाराज की जटा के जटा का मुकुट बनाया हुआ, जटा मुकुट सीसानी सुबग उर भुजन नयन विशाल, ये भी विशाल और आंखें भी बड़ी मोटी मोटी है। सरद परब विदु बदन बर लसत स्वेद कनजाल, एकदम शरदकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा के समान देदीप्यमान भगवान का मुखारविंद, उसके ऊपर थोड़े थोड़े पसीने का जाल, बहुत अच्छा लगता है। राम लक्ष्मण और सीता इनकी सुंदरता को देख करके सब आकृष्ट हो जाते हैं, देखते देखते वे नारियां थकती नहीं है। जैसे मनु मृगी मृग देख दिया से, जैसे दीपक को है वो हिरण हिरणिया यूं देखती रहती है, दीपक ये क्या चमकता है, ये क्या चीज है, ऐसे यूं देखते रहे, दीपक है उसके सामने हिरण देखता रहेगा। ऐसे राम जी को सीता जी को और लक्ष्मण जी को देख देख करके वे जो है आश्चर्य कर रही है। अब जो स्त्रियां हैं वो सीता जी के पास पहुंची और सीता जी के पास जाकर के बोलती है कि हे राजकुमारी जी, हम आपसे कुछ बात पूछती हैं, हमको पूछना नहीं आता है, हमको बोलना नहीं आता है, हमारी बात का आप बुरा तो नहीं मानोगी ना, हम ये पूछती हैं आपसे कि ये दो राजकुमार बहुत सुंदर लगते हैं, ये तो सोने के समान और मरकत मणि के समान, मरकत मणि के समान तो राम की ओर इशारा करते हैं, सोने के समान लक्ष्मण जी को करते हैं, ये दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम चंद्रमा का जैसा मुख है, करोड़ों करोड़ों कामदेव को ये लजाने वाले हैं, तो ये सखी इसमें तुम्हारे कौन है, तुम्हारे पति कौन है, बहुत प्यार से स्नेह से पूछा। अब देखो सीता जी वह केवट के प्रति राम जी का प्रेम, यहां इन स्त्रियों का सीता जी के प्रति प्रेम देखो। सीता जी भूल गई कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की अर्धांगिनी आदि शक्ति हूं, सब भूल गई। सीता जी उनके सामने जैसे सासू के सामने बहू होती है ना, ऐसी लाज से संकोच से सकुची सी मनमऊ मुस्कानी, सीता जी मन ही मन में मुस्कुराने लगी और उनको देखती है और फिर लाश ही आती है और अपने चरणों से जमीन को यूं खोदने सी लगती है। अब उनको सोचते हैं कि इनको जवाब नहीं दूं तो भी ठीक नहीं है कि इतनी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माताएं किस प्यार से बोलती हैं, इनके तो आंखों से पानी आ रहा है, मैं इनके हृदय का प्रेम देखकर मेरे भी पानी आ रहा है, इनको जवाब नहीं दूं तो ये बड़ी दुखी हो जाएंगी और ये जो जवाब पूछ रही है उसका जवाब देने में भी उत्तर देने में भी संकोच हो रहा है, दुसंकोच क्या करूं, छिपाऊं कि कहूं, छिपाऊं कि कहूं। बहुत विचार करके अंत में बाल मृग नयनी सीता है वो बहुत ही सुंदर कोयल के समान मीठे वचनों से उनको कहने लगी, देखो सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो बहुत अच्छे स्वभाव के और शरीर जिनका गौर वर्ण का है इनका नाम लक्ष्मण जी है और ये माताओं ये मेरे छोटे देवर है, छोटे देवर इसका मतलब मेरे बड़े देवर और हैं, ये छोटे देवर हैं। और फिर अपने ओढ़ने को यूं करके और ज्यादा यूं घूंघट निकाल करके थोड़ा सा यूं आंख से इशारा करके पियतन चितई ऐसे इशारा किया, ये मेरे पति हैं। पियतन चितई भों करी बांकी खंजन मंजू तिरी छे नये नहीं निज पति कह होते नहीं सी सैननी। नेत्रों के इशारे से बताते हैं सीता जी का ये लटका उनको इतना प्यारा लगा कि रंकन राय रास जन लूटी। जैसे कोई फालतू का ही धन मिल गया और कोई गरीब को खूब बड़ा भारी धन मिल गया वो लूटता है, यूं यूं लूटता है, ऐसे वो सीता जी के लटके पर और सीता जी की बात पर मुग्ध हो गई और होश खो बैठी कि हम क्या कर रही हैं। क्या होश खो बैठी, ये देखो आपको यही मिलेगा संसार में, कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा ऐसा। क्या अति सप्रेम सिय पाई परी बहुविधि देहि असीस। सीता जी के पैरों में पड़ती है, ए राजकुमारी, और ऊपर खड़ी होती सिर पर आशीर्वाद रखती है। आशीर्वाद देने वाला पैरों में कैसे पड़ेगा, पैरों में पड़ेगा वो आशीर्वाद कैसे देगा, सब भूल गई वो सीता जी के प्रेम में। कहे देखो तुम सदा सुहागिनी रहना, जब तक ये पृथ्वी के पृथ्वी शेष नाग पर है ना तब तक तुम्हारा सुहाग अखंड रहे, पार्वती के समान तुम पति के प्रिय बनो, परंतु हे देवी हम पर कृपा करना मत छोड़ना, और तुम इधर आओ ना फिर हमसे मिलना। जो ही मार्ग फिरी बहोरी दर्शन देव जान निज दासी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बोलती है। सीता जी सबको आनंदित करके और संतुष्ट करती है। फिर राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और उनसे पूछा कि माताओं लोगों आप बताओ आगे का मार्ग किधर से जाए, तो लोग बड़े दुखी हो गए। परंतु लखन जान के सहित तब गवनु कीन रघुनाथ फेरे सब प्रिय बचन कहीं लिए लाई मन साथ। राम जी महाराज ने सबका मन अपने साथ में ले लिया, कुछ दूर जो लोग चले थे उनको वापस फेर दिया और सीता और लक्ष्मण के साथ आगे वन की ओर प्रस्थान कर गए। जय सीताराम 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 जय सीताराम
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 जय सीताराम सीताराम सीता सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 सीताराम
जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम
श्याम वर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाणी
जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय